नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता। हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। फॉर ऑल ऑफ यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे।
वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ असर्ट्स पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर द अल्टीमेट मास्टर्स इन डिटरमिनिंग द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की यात्रा केवल एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है।
Relief operations in full swing in Ramban district of Jammu and Kashmir after Sunday's cloud burst.
मौसम विभाग ने बिहार के 31 जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया।
And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Delhi Capitals in Lucknow this evening. And now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. Today we will talk about World Earth Day. Every year on 22nd of April, people around the globe come together to celebrate World Earth Day, a day dedicated to raising awareness about environmental issues and promoting action to protect our planet. Since its inception in 1970, Earth Day has played a significant role in shaping environmental policies, fostering community engagement, and inspiring individuals to make conscious choices that contribute to a sustainable future. Earth Day was founded in 1970 by Senator Gaylord Nelson of the US and has been observed every year on April 22 since then. Earth Day is more than just a celebration. It is an important day for raising awareness, advocating and engaging people in activities aimed at addressing the global climate catastrophe and also supporting environmental lifestyle changes.
विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। 1969 में यूनेस्को शिखर सम्मेलन में सुझाव के बाद पहली बार 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस के उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और धरती की रक्षा के लिए कार्रवाई को प्रेरित करना है। ये लोगों को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और स्थिरता के बारे में जागरूक करता है और स्वच्छता तथा पौधारोपण जैसे सामुदायिक प्रयासों को संगठित करता है। ये दिन सामुदायिक सहयोग और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देता है तथा व्यक्तियों और व्यवसायों को स्थायी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष का विषय व्यक्तियों, समूहों और सरकारों से 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को 3 गुना करने का आग्रह करता है, जो अक्षय ऊर्जा अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। ये अभियान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और स्थायी, न्यायसंगत तथा समावेशी ऊर्जा भविष्य में निवेश करने के महत्व पर बल देता है। तो अनीता, अगर हम देख सकते हैं तो आज की ये जरूरत है कि हम पृथ्वी की सुरक्षा करें, उसको बचाएं, सस्टेनेबल लिविंग जितना हो सके अपनाएं।
जी बिल्कुल। एंड ऑल्सो द थीम फॉर अर्थ डे फोकसेज ऑन मेजर्स टू अचीव ट्रिपल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी गोल बाय द ईयर 2030 यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। पीपल आर यूजिंग सोलर पैनल्स ऑल्सो टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वेरियस वेज आर बींग अडॉप्टेड। द डे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, ओशन, सॉइल, ecosystems, wildlife and human health by harnessing renewable sources of energy. Solar, wind, hydroelectric, geothermal and tidal energy are in focus to create clean, inexpensive and unlimited energy for the entire planet.
गृहमंत्री अमित शाह ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पृथ्वी जीवन का पोषण करती है और विकास तथा उद्भव के लिए आवश्यक परिस्थिति तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है। श्री शाह ने कहा कि पृथ्वी की बेहतरी को बढ़ाने तथा अत्यधिक सावधानी से इसकी रक्षा करके इस सहानुभूति का प्रतिदान करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अटूट वचनबद्धता के साथ सतत विकास के लिए वैश्विक पहल का नेतृत्व कर रही है। गृहमंत्री ने पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए अथक परिश्रम करने वाले संरक्षणवादियों के प्रयासों की भी सराहना की।
एंड दी एनवायरमेंटल चेंजेस वी फेस डिस्पाइट दी अवेयरनेस एंड इनिशिएटिव्स स्पार्क्ड बाय अर्थ डे आवर प्लैनेट कंटिन्यूज टू फेस अनफॉर्चुनेटली क्रिटिकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस आल्सो लाइक क्लाइमेट चेंज rising temperatures, melting glaciers, and unpredictable weather patterns threaten ecosystems, human communities, and also food security. And also deforestation, where large-scale cutting of forests leads to habitat destruction, loss of biodiversity, and increased carbon emissions. Then there is plastic pollution. Millions of tons of plastic waste ends up in oceans and landfills, harming not only marine life but also disrupting the ecosystems. Then a loss of biodiversity is there. Human activities endanger plant and animal species, disrupting the delicate balance of nature. So Earth Day serves as a reminder that every individual has a role to play in protecting the environment. And here are some of the ways we can contribute. We can reduce, reuse and recycle. There can be proper waste management, which helps in minimizing pollution and conserve resources.
और श्रोताओं, आइए अब हम बात करते हैं धरती के कुछ तथ्यों के बारे में जिससे हम कुछ अपरिचित रहते हैं। आप सभी को लगता होगा कि पृथ्वी गोल है, पर पृथ्वी गोल नहीं है और धरती का 70% हिस्सा पानी है। धरती पर पाए जाने वाले कुल पानी का 97% हिस्सा समुद्री खारा पानी है। और क्या आपको पता है कि पृथ्वी के 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष है और धरती के केंद्र में लोहा भी है, और पृथ्वी ही एक अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, और पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण एक जैसा नहीं है। तो अब हम आइए बात करते हैं, हमने पृथ्वी के बारे में बात कर लिया कि क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हम इसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। हम 5 उपायों की बात करते हैं। एक तो पहला है जल संरक्षण। अनीता, आजकल के हम टाइम पे देख रहे हैं कि जो वाटर कंजर्वेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चला है। किस तरीके से हम पानी को सुरक्षित बचा सकते हैं, क्योंकि जो भूजल का दोहन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आजकल की जो टेक्निक्स है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिससे हम जो है बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में जो है अपने कपड़ों को धुलने के लिए, अपनी गाड़ियों को धुलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिसका हम आम तौर पे भूजल का इस्तेमाल करते हैं और उसका हम इससे दोहन से बच सकते हैं।
करेक्ट।
और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल लिविंग। आजकल हम फैशन के दौर में देखते हैं कि हम बहुत ढेर सारे कई प्रकार के ट्रेंड्स आते हैं, तो हमेशा हम कपड़े बदलते रहते हैं, पर हमको ये मालूम नहीं होता कि वो एक जीन्स के कपड़े जो हम हर रोज बदल रहे हैं उसको बनाने में कितना ज्यादा पानी लगता है। और एक तरीके से हम पृथ्वी पे कचरा भी प्रबंधन करने में हमको दिक्कत होती है, तो धरती पर कचरा भी बढ़ता जा रहा है। उसका उचित प्रबंधन और रिसाइकलिंग ना होने के कारण जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं, तो हम सस्टेनेबल लिविंग अपना करके इससे बच सकते हैं। और तीसरा है वायु प्रदूषण कम करना। आजकल हम देख रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां हम रहते हैं, वायु प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो हम जो है क्या कर सकते हैं श्रोताओं, हम प्लांटिंग कर सकते हैं, हम अपने घर के आसपास, हाँ अब हम फ्लैट में रहते हैं तो वो कल्चर नहीं है, वो संस्कृति नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लैट्स में हम एक तरीके से एक कम्युनिटी लिविंग को प्रोत्साहित करके पार्क्स बना सकते हैं और प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और
यू कैन कीप इंडोर प्लांट्स, यू कैन कीप पॉटेड प्लांट्स, यू कैन स्टिल आई मीन हैव योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हैविंग यू नो क्लीनर एयर।
और सबसे बड़ी बात जो हमें हमारी मिट्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वो है केमिकल के इस्तेमाल। जो सब्जियां आजकल की मतलब उगाई जा रही है उसमें केमिकल्स का बहुत प्रयोग होता है, जिससे क्या जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, जो मिट्टी की ऊपरी लेयर्स है, वो खराब हो जाती है,
हो जाती है।
हाँ, डैमेज हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि सिर्फ हमें सब्जियों में ही हमें केमिकल्स नहीं मिल रहा है, हमारी मिट्टी में भी वो जो केमिकल्स हैं वो पूरा जो है इकट्ठा होकर के उसको कहीं ना कहीं से
damage kar pahuncha rahe hain.
Absolutely. And fertilizers which we think, the chemicals that we think are a necessary evil, are actually very bad for the soil also. Not just what we are eating, the plants and fruits and all that, but also it damages the soil in the long run.
Even hum dekh rahe hain aajkal ke bahut sare foundation jaise Isha foundation hai, wo drives chala rahe hain ki kis tarike se hum prithvi ko, hum mitti ki suraksha kar sakte hain. Aur sabse badi important baat, bijli ke istemal mein kami. Hum dekhte hain ki jitna bhi lights, fan, geyser sab ऑन करके हम रखते हैं, हमको लगता है कि क्या मतलब कहां से आ रहा है. ये सारी चीजें श्रोताओं आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि फॉसिल फ्यूल से आती है, और फॉसिल फ्यूल से आता है जब हम एक फॉरेस्ट को किसी को खोद मतलब उसके नीचे से आता है, और उसके लिए हमको फॉरेस्ट को काटना पड़ता है और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो इसीलिए आजकल हम सोलर एनर्जी, वाटर हार्वेस्टिंग में और ऐसी टेक्निक्स में जा रहे हैं जहां पे हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है संरक्षण कर सकते हैं. तो जितना हो सके, जितना हो सके और जैसा हो सके आप अपने घर में संरक्षण कर सकते हैं.
Absolutely.
आप वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक्स लगवा सकते हैं. आप जो है भूजल दोहन कम कर सकते हैं. अगर आप गांव में रहते हैं, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल हम देखते हैं ट्यूबवेल्स की परंपरा है, तो वो हर रोज ट्यूबवेल्स चला देते हैं जो है सींचने के लिए. तो अगर आपको पानी सींचना है तो वो वाटर हार्वेस्ट से जो कलेक्टेड पानी है उसका
दैट कैन बी यूज्ड. एंड देन वाटर कंजर्वेशन एक्चुअली यू नो वाटर इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स. सो लाइक वी कीप टेलिंग पीपल, डोंट कीप योर टैप्स ओपन और डोंट कीप टू मच ऑफ टाइम इनटू द शावर. इट इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर देयर. एंड ऑफकोर्स टूवर्ड्स दिस वी कैन डू लाइक वी कैन प्लांट ट्रीज. अफॉरेस्टेशन हेल्प्स कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, रिस्टोर्स इकोसिस्टम एंड ऑफकोर्स प्यूरिफाइज द एयर. देन वी कैन ऑल्सो एजुकेट एंड एडवोकेट. दैट्स वॉट वी आर डूइंग आर बिटल्स. वी आर टेलिंग आर listeners how you can actually save not just water but also electricity, right? And we can raise awareness in communities and support policies that protect the environment, which is crucial for long term change.
Aur ek bahut badi baat jo hamare vehicles hain, hum dekhte hain ki bahut purane ho jate hain, 20 saal 10 saal hum usko change nahi kar rahe, aur is baat pe hum bilkul bhi zara bhi dhyan nahi dete ki unse kitna pollution ho raha hai. In fact pollution board bhi hamare yahan kaam kar rahe hain jo aise vehicles ko ban karte hain ya usko bolte hain ki aap naya vehicles le उसको परचेज करके, और नया जब आप खरीदते हैं तो उस पर आपको कुछ प्रतिशत की छूट मिलती है. तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं श्रोताओं, जिससे आप इस पृथ्वी को बचाने में, संरक्षण करने में अपना योगदान दे सकते हैं, तो जरूर करें.
We are also switching to electric vehicles. That's also an effort in the same direction. So World Earth Day is more than just a celebration. It is a call to action for everyone to reflect on their environmental impact and work towards a greener, healthier planet. Whether through small daily habits, like we mentioned, or large-scale initiatives, every effort counts. Like we say, every drop counts when you have to save water. As we continue to face environmental changes, Earth Day serves as a powerful reminder that collective action can lead to a sustainable future for generations to come. So let's make every day Earth Day and take responsibility for the well-being of our planet. Together, let's get to work and make 2025 the year we restore good health to Mother Earth. And this is the UN on X, which they said that celebrate Earth Day 2025 by showing our planet some love. Join a local cleanup drive, advocate for change and choose sustainable practices. Let's, Akarshita, make a conscious effort to reduce our reliance on plastic, as every step counts towards a healthier planet. Happy Earth Day to everyone. Let's celebrate our amazing planet by taking action against plastic pollution. Choose reusable alternatives and be a champion for change.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
जी, एंड लेट्स गो ओवर टू ओडिशा, वेयर द स्टेट इज स्पीयर हेडिंग अ ग्रीन रेवोल्यूशन विद अ स्ट्रांग पुश टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग. इट एम्स टू क्रिएट अ सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चरल लैंडस्केप. इन ओडिशा द फोकस इज ऑन प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, एंड ऑल्सो एनकरेजिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर. मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
Organic farming, which relies on natural processes and eco-friendly inputs, is gaining momentum in Odisha. The state government is actively promoting natural farming methods, advocating for reduced dependence on chemical fertilizers and pesticides, and encouraging the use of organic manure. These efforts are expected to improve soil fertility, protect biodiversity, and make agriculture more sustainable in the long run. To support this shift, Odisha has established the Regional Center for Organic Farming in in Bhubaneswar. This institution provides extensive training to farmers offering courses on organic farming techniques, soil health management and integrated pest control. By equipping farmers with necessary skills and knowledge, the state is ensuring a smooth transition from conventional to organic farming. Odisha has the potential to become a leader in organic farming in India. The government's proactive policies combined with increasing farmer participation are paving the way for a cleaner and healthier agricultural future, says Dr. Arvind Padhi, Principal Secretary, Department of Agriculture and Farmers Empowerment, Government of Odisha.
The significance of organic farming has numerous benefits and significance. As we know, it would conserve the natural resources and, of course, reduce the amount of agricultural pollution. It would also promote eco-friendly agricultural practices. And, of course, it would preserve the biodiversity and make the ecological balance. In Odisha, we have state government scheme called Balabhadra Jaivik Chasav Mission, besides many other schemes of Government of India. So we are trying to promote and adopt organic farming practices in the state so that the farmers can improve their soil fertility. It would also reduce soil erosion and, as I told, increase biodiversity. The Government of India has recently launched the National Mission on Natural Farming. So we want to also become a part of that great initiative. And we want to promote organic farming in a big way, as it has very good potential to contribute significantly to the state's sustainable agricultural development and environmental conservation and ultimately the economic growth.
The state's organic farming movement is a testament to the growing realization that agriculture must evolve to be both productive and environmentally responsible. For Parikrama, this is Sitish Singh Rathore, Akashvani, Cuttack.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग को साइबर तहसील पहल के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने कल लोक सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्राप्त किया। क्या है ये साइबर तहसील योजना और इससे आम लोगों को क्या लाभ मिल रहा है, आइए जानते हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा से।
राजस्व विभाग ने साइबर तहसील पहल से राज्य में भूमि नामांतरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल, प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाकर एक बड़ा बदलाव किया है। इस पहल के माध्यम से मध्य प्रदेश में अब तक 150,000 से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। साइबर तहसील के अंतर्गत नामांतरण की प्रक्रिया संपत्ति रजिस्ट्री के समय से ही अपने आप शुरू हो जाती है, जिससे अलग से आवेदन करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। पहले जहां इस प्रक्रिया में औसतन 70 दिन लगते थे, वहीं अब मात्र 20 दिनों में प्रकरणों का निपटारा हो जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने से नागरिकों को तहसील कार्यालय जाने की जरूरत भी नहीं है। सभी सेवाएं जैसे सार्वजनिक सूचना, आपत्ति दर्ज कराना और प्रमाणित आदेश प्राप्त करना, SMS, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल रूप में उपलब्ध होती हैं। इस पहले नागरिकों के समय और खर्च दोनों में महत्वपूर्ण बचत सुनिश्चित की है और पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया है। इससे नागरिक अपने नामांतरण मामले की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। साइबर तहसील ने क्षेत्रीय सीमाओं को समाप्त कर दिया है और केंद्रीकृत प्रणाली से प्रकरणों का आवंटन साइबर तहसीलदारों को राउंड रॉबिन पद्धति से किया जाता है, जिससे निष्पक्ष और त्वरित निपटारा सुनिश्चित हुआ है। साइबर तहसील जैसे नवाचारों से प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार हुआ है। क्षेत्रीय तहसीलदार अब जटिल और विवादित प्रकरणों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रदेश की 13 साइबर तहसीलदारों द्वारा 1,364 न्यायालयों का प्रबंधन किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में मामलों का निपटान हो रहा है। वहीं तहसील कार्यालयों पर नामांतरण प्रकरणों के कार्यभार में भी 25% की कमी आई है। साइबर तहसील पहल को राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक सराहना मिली है। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों ने भी इस प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई है। इसे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और भूमि संवाद कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
And now we go over to Mumbai. Animation Filmmakers Competition, 42 finalists of the Animation Filmmakers Competition, AFC, which was held as part of the Create in India Challenge Season 1 of Waves 2025, has been announced. Our correspondent reports that these projects have made it for the final round, focused on original storytelling across the entire spectrum of animation, encompassing traditional animation, VFX, augmented reality, AR, virtual reality, VR, and virtual production. A report.
The selection of the top 42 finalists was the result of a rigorous 9-month evaluation process led by the Dancing Atoms team in collaboration with the Waves team. The dedicated efforts of the participants was complemented by the discerning expertise of an esteemed panel of national and international jury members. Speaking to Akashvani News, one of the finalists from Mumbai, Shweta Marathe, shared details of her project.
Melting Shame is an animated short film for teenagers and young adults, which explores the emotional complexities of shame associated with abuse. By shifting the lens to these age groups, the film fosters deeper understanding of the long-term impact, encouraging critical conversations often avoided in mainstream narratives. The film is set in the suburbs of Mumbai and employs stream-of-consciousness narrative approach as it parallels between editing a film and editing life. The film's tone is bittersweet, intimate yet unsettling. It delves into the weight of traumatic memories while finding a balance in the warmth and light-hearted humor in the sisters' bond.
These 42 talented participants will now have the opportunity to pitch their original projects during the Waves Summit from 1st May. The top three winners will receive a cash prize of up to 5 lakhs each. This is Pratsana from Mumbai for Parikrama.
अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। राम मंदिर निर्माण कार्य अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना होगी, जिसका कार्य 30 अप्रैल तक पूरा करने का प्रयास रहेगा।
अयोध्या में श्री राम मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने के लिए मंदिर ट्रस्ट लगातार प्रयास कर रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम और सनातन संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं के भी दर्शन हो सकें, इसके लिए प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना की जा रही है। इनमें सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी की मूर्तियां शामिल हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि कुल 18 प्रतिमाओं की स्थापना का काम संपन्न करवाया जाएगा। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर राम दरबार को प्रथम मंजिल के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा।
ऊपरी मंजिल पर राम दरबार, परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना, प्रतिमा सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी, शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी की स्थापना, सप्त मंडप में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य, निषाद राज, शबरी, अहिल्या, इनकी स्थापना का समय आ गया है। मूर्तियां लगभग बन चुकी हैं। तुलसीदास जी की प्रतिमा का स्थापना हो चुकी है। यात्री सुविधा केंद्र का मंडप, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी आदमी मंदिर के दर्शन करने प्रवेश करेंगे वो तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य करेंगे। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। हमारा सुझाव विचार है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें।
मूर्तियों की स्थापना के बाद जून में सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया जाएगा। चंपत राय ने बताया कि इसके साथ ही मंदिर के प्रथम तल का काम पूरा हो जाएगा और पावर क्रेन भी इसके बाद हटा ली जाएंगी।
सब अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगी। जून मास में कोई दिन सोचेंगे, सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय होगा उसके 2 दिन पहले से शुरू करेंगे, जलवास, अन्नवास, औषधिवास, शैयावास, लेकिन जून में इस काम को अवश्य ही संपन्न करेंगे।
मंदिर ट्रस्ट का प्रयास है कि अयोध्या का श्री राम मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या को नई पहचान दे और ये मंदिर श्रद्धा के प्रतीक के साथ हमारी प्राचीन संस्कृति और धार्मिक चरित्रों की भी जानकारी दे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी लखनऊ से शैलेंद्र शर्मा।
And the Union Public Service Commission, UPSC, has announced the final results of its Civil Services Exam 2024. The UPSC has recommended a total number of 1,009 candidates for appointment, with 725 men, 284 women. The top 25 candidates comprise 11 women and 14 men, with the top 5 candidates comprising 3 women and 2 men. Shakti Dubey has secured the first position in the Civil Services Examination 2024. The written test of the Civil Services Exam was held by the Union Public Service Commission in September last year, followed by interviews for personality test held in between January and April this year.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
In shooting, India's Simranpreet Kaur Brar has clinched her maiden senior international medal with a silver in the women's 25-meter pistol event at the International Shooting Sport Federation ISSF World Cup in Lima, Peru. The Indian shooter shot a total of 33 hits in the 10 series of 5 rapid-fire shots final, finishing one hit behind China's Sun Yujie, who won back-to-back World Cup golds in the event. This marks India's fourth silver medal at the Lima World Cup, adding to the country's tally of 2 golds and 1 bronze. And now in business news, the benchmark domestic equity indices today ended with modest gains, continuing the upward movement for 6th straight session, supported by realty, consumer durables and FMCG sectors. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rose 187 points or 0.24% to close at 79,596. The National Stock Exchange Nifty 50 added 42 points or 0.17% to settle at 24,167. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 98,730 rupees per 10 grams when the reports last came in. And now we take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 22nd of April 1930, revolutionary freedom fighters battled the British forces in the Jalalabad Hills near Chittagong.
Breaking the myth that the British were invincible, Master Das Surya Sen, with his team of revolutionaries, liberated his hometown from British rule. On the night of 18th of April 1930, Surya Sen and his Indian Republican Army attacked the British strongholds and captured them, thus almost effectively paralyzing the British administration in Chittagong.
A team led by Anant Lal Singh and Ganesh Ghosh, along with Master Da, captured the reserve police lines at Dampara. On the other hand, a team led by Ambika Chakravarti and a woman revolutionary, Preetilata Vaddedar, cut off the telegraph and telephone lines. Thus, the communication of Chittagong was severed from the rest of India.
Another team, led by young Jugantar member Lal Mohan Sen, uprooted the Nangal Kot railway line, effectively destroying chances of any source of help for the British forces. Master Da and his fellow revolutionaries then assembled at the reserve police lines and hoisted the Indian flag, declaring the formation of a provisional revolutionary government. Thus, Chittagong was free for 4 days from the British Raj.
But soon, the British sent reinforcement by road. In the ensuing battle, many revolutionary freedom fighters were martyred, including Harigopal, Bidhu Bhattacharya, Nirmal Lala, Naresh Rai and Prabhash Bal. Ambika Chakravarti and Binod Bihari Chaudhary were gravely injured. General Loknath, like a wounded tiger, exhorted his comrades, "Fire until the machine guns are completely silent."
The brave sons of the soil fought an honourable battle to the last. The saga of the revolutionaries could be summarised in the lines of the famous poet Faiz Ahmed Faiz.
Jis dhaj se koi maktal mein gaya, wo shaan salamat rehti hai. Ye jaan to aani jaani hai, is jaan ki to koi baat nahi.
22nd April is also the death anniversary of our freedom fighter, Bishambhar Dayal, who died in 1931.
Bishambhar Dayal was born in Alwar district of Rajasthan in 1893. Right from his initial days, he was committed to the national cause, and that is why he didn't marry in his lifetime. At a young age of 19 years, Bishambhar entered into the revolutionary freedom movement to free the motherland from the shackles of British tyranny.
He was also involved in bombing Viceroy Hastings in Delhi in 1912. Because of this incident, Bishambhar came into the eyes of the British government.
Bishambhar became a member of the Revolutionary Socialist Party and came into contact with Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh. It was during this period Chandrasekhar Azad visited Bishambhar Dayal and learned bomb making and other activities from him.
He was planning to rescue Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, but before any plan could be implemented, Bishambhar was arrested. He was tried in the Delhi conspiracy case and sent to jail. In jail, he was tortured and he succumbed to his injuries on the 22nd of April 1931.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
people who are either born this day or passed away today, Lal Gudi Gopal Iyer Jayaraman. His death anniversary is today. The Carnatic music violinist, vocalist and composer, commonly grouped with M.S. Gopalakrishnan and T.N. Krishnan as part of violin trinity of Carnatic music. He was awarded the Padma Bhushan by the Government of India in 2001.
आज सर गंगाराम की जयंती है. वे प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजसेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक थे. उन्होंने सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी बनाई जिसके अंतर्गत विधवा आश्रम, अपाहिज आश्रम, चिकित्सालय आदि संस्थाओं की स्थापना की गई. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और अनीता को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर.
नमस्कार.